दिन भर 2 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर फिर बवाल, मुद्दे ने राजनीतिक रंग लिया।
मोदी जी, हम आपकी अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अभी भी हम सोचते हैं कि आप इंडिया की लास्ट होप हैं, लेकिन ऐसे कार्रवाइयों से हमारा दिल बहुत दुखित हो रहा है।
दुनिया जहान में बताएंगे वेनेजुएला में क्यों गहरा रहा है राजनीतिक संकट।
ह्यूगो शावर के टाइम में जो तेल की कीमत थी काफी अच्छी थी, $150 तक पहुंच गए थे, और पिछले 4-5 सालों में तेलों की कीमत काफी ज्यादा गिर चुकी है। और वेनेजुएला की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी आर्थिक स्थिति है, वो तेल के एक्सपोर्ट पे निर्भर करती है।
और जिक्र होगा इंग्लैंड सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम का भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। वन रैंक वन पेंशन यानी OROP की मांग के चलते 70 साल के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने कथित तौर पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पूर्व सैनिक रामकिशन की कथित आत्महत्या के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सैनिकों के साथ छलावा किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब सुसाइड करने वाले रामकिशन के परिवार से मिलने जा रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की है कि वो OROP को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि पूर्व सैनिकों को अपनी जान ना देनी पड़े। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों ने करीब 200 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सरहद पर हो रही गोलीबारी के चलते फैले तनाव को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में भारत के 8 नागरिक मारे गए थे। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत पर 4 लोगों को मारने का आरोप लगाया था। अमरीका के आयोवा में 2 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी को तब गोली मारी गई जब वो उपनगर डिमोइन में अपने पेट्रोल कार में अकेले बैठे थे। दूसरे पुलिस अधिकारी जो मामले की जांच करने गए थे, उन्हें भी गोली मार दी गई। पुलिस का मानना है कि ये घात लगाकर किए गए हमले हैं। हमले का मकसद अभी साफ नहीं है और हत्यारे की कोई निशानदेही भी नहीं मिल पाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमोइन के पुलिस अधिकारी पॉल पेरिजेक ने घटना का ब्यौरा दिया।
There's somebody out there shooting police officers. We hope we find him before anybody else gets hurt. We definitely don't want anybody in the
public. किसी बाहरी व्यक्ति ने दोनों पुलिस अधिकारियों की हत्या की है। हमें उम्मीद है कि किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले हम उसे ढूंढ लेंगे। हम निश्चित तौर पर नहीं चाहते कि समाज के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, लेकिन यहां साफ तौर पर पुलिस के लिए खतरा है, इसलिए हमने पुलिस बलों की संख्या 2 गुनी कर दी है। मुझे लगता है कि इस इलाके के लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बाहर खतरा मंडरा रहा है। ये थे पुलिस अधिकारी पॉल पेरिजेक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक के मूसल शहर पर नियंत्रण की लड़ाई में इराकी सेनाएं शहर के बाहरी इलाके में दाखिल हो गई हैं। नागरिकों को सुरक्षा देने और नए सिरे से इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से शहर को आजाद कराने के लिए इराकी सेना अब घर घर में घुसकर लड़ाई करने की तैयारी कर रही है। इराकी सेना के साथ मौजूद BBC संवाददाता ने बताया कि इराकी सैनिक IS के छिपे अड्डों, खुफिया सुरंगों और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के डर से अतिरिक्त सैन्य बल का इंतजार कर रहे हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उनके मॉस्को स्थित दफ्तर को रूसी अधिकारियों ने बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद कर दिया है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। राजधानी दिल्ली में एक पूर्व सैनिक की एक वन रैंक वन पेंशन यानी OROP मामले से कथित तौर से निराश होने के बाद की गई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ चुका है। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद से दिल्ली में दिग्गज नेताओं के बीच बयानबाजी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
अगर कहा जाए कि बुधवार का दिन एक पूर्व फौजी की कथित आत्महत्या के बाद शुरू हुई सियासत के नाम रहा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिल्ली में 2 से 3 जगहें ऐसी रही जहां भीड़भाड़, पुलिस बंदोबस्त और इस सब के बीच विरोध प्रदर्शन होते रहे। सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सैनिक के परिवार वालों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां उनकी पुलिस से कथित झड़प हो गई। पुलिस ने थोड़ी देर के लिए सिसोदिया को हिरासत में लिया। इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले एक वीडियो संदेश जारी किया और फिर पत्रकारों से बात करते हुए वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की।
सबको झूठ बोल रहे हैं कि और उप लागू कर दिया, अगर लागू हो जाता तो फिर रामकिशन जी को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती। जिस तरह से सेना के साथ केंद्र सरकार की भाजपा सरकार छलावा कर रही है, इस तरह की पहली बार देखने को मिला है।
दरअसल वन रैंक वन पेंशन का असल मुद्दा ये रहा है कि नौकरी से रिटायर होने वाले फौजियों को उनके रिटायरमेंट के समय के नियमों के हिसाब से पेंशन मिलती है, यानी जो लोग 25 साल पहले रिटायर हुए हैं उन्हें उस समय के हिसाब से पेंशन मिल रही है और जो उनके हिसाब से बहुत कम है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो हवलदार अलग अलग समय पर रिटायर हुए हैं, तो एक को अगर 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे को हो सकता है 500 रुपए मिल रहे हों। दोनों की पेंशन में ज्यादा अंतर है, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए मांग हो रही है कि एक रैंक के लोगों को एक तरह की पेंशन दें। इसके लिए कोई एक निश्चित तारीख तय करके सभी को अभी के हिसाब से पेंशन देने की मांग पर पिछले कई दिनों से यह मुहिम जारी रही है। लेकिन बुधवार को पूर्व सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की कथित आत्महत्या के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। उनको भी अस्पताल के बाहर रोक लिया गया। बाद में राहुल को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। इतना ही नहीं, सैनिक के बेटे को भी पुलिस ने इसी थाने में बैठा कर रखा, लेकिन राहुल गांधी के तेवर पूरे दिन तीखे रहे।
पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो।
लगता है जबरदस्ती।
कैसा काबिल आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? अगर ये अरेस्टिव नहीं है तो इनको निकालिए, अभी एक मिनट निकालिए, एक मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं। और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए।
मामले पर तूल एक और जगह पकड़ रहा था, जंतर मंतर पर। ये वो जगह है जहां पिछले एक वर्ष से भी ज्यादा से पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा है। मृत सूबेदार रामकिशन के बेटे के हवाले से वहां इस तरह की खबरें पहुंची कि कथित आत्महत्या के पहले उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि वो वन रैंक वन पेंशन न लागू हो पाने की वजह से ही ऐसा कदम कथित तौर पर उठा रहे हैं। ओआरओपी आंदोलन में शामिल रहे ब्रिगेडियर जे एस संधू जंतर मंतर पर मिले।
जो जवान सर्व कर रहे हैं उनको जाके बोल सकते हैं कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। आप इनको बोल के देखिए, इधर आपको जो जवाब मिलते हैं फिर पता चलेगा आपको कि आपने वन रैंक वन पेंशन दिया है कि नहीं दिया है। जो यूनिफॉर्म में है वो आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी, हम आपकी अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अभी भी हम सोचते हैं कि आप इंडिया की लास्ट होप है, लेकिन ऐसे कार्रवाइयों से हमारा दिल बहुत दुखित हो रहा है।
इधर दिल्ली में नेताओं को रोके जाने और हिरासत में लेकर तुरंत छोड़ देने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब से आधे घंटे पहले ऐसी अपुष्ट खबरें आई कि विरोध प्रदर्शन के लिए दोबारा निकले राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं को फिर से पुलिस ने रोका है। लेकिन दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख एमके मीना ने रामकिशन के परिवार वालों को हिरासत में लिए जाने की वजह बताई थी। एमके मीना,
जो उनका सारा पोस्टमार्टम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में होगा, यहाँ पर नहीं होगा, उसके बावजूद फैमिली मेंबर्स ने पुलिस की एडवाइस नहीं सुनी और यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए और लीडर से कांटेक्ट करने लगे।
यहाँ पर इस बात का जिक्र जरूरी है कि इसी वर्ष सितंबर और अक्टूबर महीने में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने ओआरओपी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन जिन 7 बातों की घोषणा की गई उनमें से पूर्व सैनिकों के सभी एसोसिएशन ने ज्यादातर को नामंजूर कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वो इस पर विचार करने के लिए एक जज वाली न्यायिक समिति बना रही है जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में आ जाएगी, लेकिन ओआरओपी आंदोलनकारियों का कहना है कि इसकी रिपोर्ट 1 महीने में आनी चाहिए। बहरहाल मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने के काफी देर बाद देर शाम को विदेश राज्य मंत्री पूर्व जनरल वीके सिंह ने बयान दिया और कहा कि ओआरओपी जैसे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
और अब रुख करते हैं भोपाल का, जहां सिमी के 8 सदस्यों के भागने और कथित मुठभेड़ के बाद अब जेल प्रशासन बंद सिमी कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती बरत रहा है। सख्ती के चलते सिमी सदस्य भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जेल का दौरा किया और सुरक्षा के इंतजाम देखे। उधर मारे गए सिमी सदस्यों के परिवार वालों का कहना है कि उनके साथ जुल्म हुआ है। भोपाल से शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल सेंट्रल जेल में अब बचे सिमी के 21 सदस्यों के बैरकों की जांच की गई है। पुलिस और जेल अधिकारियों का दावा है कि उनके बैरकों में काफी सामान मिला है। इसके बाद जेल में बंद सिमी के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल के सूत्रों का दावा है कि जांच में सिमी सदस्यों के बैरकों में जरूरत का हर सामान मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों के साथ जेल जाकर सुरक्षा के इंतजामों को देखा।
सेंट्रल जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, कुछ आवश्यक निर्देश दिए, व्यवस्थाएं और सुदृढ़ और चाक चौबंद करने के लिए और विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए।
वहीं जेल की सुरक्षा के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल के रिटायर्ड एडिशनल आईजी जी के अग्रवाल ने 2014 में प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा में कमियों के बारे में बताया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जी के अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी के बारे में बताया,
मुख्य बिंदु उसके ये थे कि जेलों से बंदियों को फरार न हो, क्योंकि किसी भी बंदी का फरार होना ये बड़ा घातक होता है समाज के लिए और उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने को पकड़ा है, न्यायालय ने सजा दी है। अतः बंदी फरार न हो सके उस प्रयास को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने खत लिखा था चीफ सेक्रेटरी मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ऑफ मध्यप्रदेश और उसी कॉपी भेजी थी मैंने मिस्टर डोमाल को, डायरेक्टर आईबी को और जॉइंट डायरेक्टर आईबी भोपाल।
वहीं दिवाली की रात कथित मुठभेड़ में मारे गए खंडवा के सिमी सदस्यों को मंगलवार रात दफना दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात था और जनाजे को ले जाने के दौरान शहर में तनाव देखा गया। वहीं जनाजों में पथराव भी किया गया। जाकिर हुसैन के पिता बदरुल हुसैन इस पूरी घटना से मायूस हैं। उनका छोटा बेटा भी इस वक्त भोपाल जेल में सिमी से ताल्लुक होने की वजह से बंद है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों पर बेवजह मामले दर्ज किए गए हैं।
मेरा तो पूरा मानना गया, मैं तो आंखों से देख रहा कि बच्चे को घर से लेके गए, पहले वाले बच्चे का रतलाम में केस हुआ था तो दूसरे वाले को घर से लेके गए, उसको दो दो तीन तीन चार्ज लगा दिए, तो उसमें अब बोलने का क्या सवाल है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बच्ची बड़ी बड़ी दीवारों को फान के और वो बच्चे नियत से और उनको है ना इतना जान लेवा, मैंने बिल्कुल हैवान जैसे है ना उन बच्चों को गोली मारी। मैं तो मेरी आंख से देखा, मेरे बच्चे को लाया, क्या मतलब हिंदुस्तान ऐसी मार दो किसी को, मार दो किसी को तड़पा तड़पा के मार दिए।
वहीं सिमी के दूसरे सदस्यों के परिवार वाले भी मानते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और इन लोगों को फर्जी मामलों में फंसा कर मार दिया गया है। खंडवा में 5 सिमी सदस्यों के शव दफनाए गए, जबकि बाकी 3 में से 1 का शव भोपाल में और 2 अन्य के शव उनके परिवार को सौंप दिए गए। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय। इराक के मूसल शहर में कल दाखिल हुई इराकी सेनाएं घर घर की तलाशी ले रही हैं ताकि इस्लामिक स्टेट के चंगुल से मूसल को पूरी तरह से आज़ाद कराने के अभियान को नए सिरे से आगे बढ़ाने से पहले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इराकी सेना की टुकड़ी के साथ मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सैनिक सहायक सैन्य टुकड़ियों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आईएस के छुपे हुए लड़ाकों की ओर से हमले की आशंका है। बीबीसी ने स्थानीय लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि वो डर के साए में जी रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
इराक के आतंकवाद निरोधक सेवा के प्रवक्ता सबाह अल नुमान ने बीबीसी को बताया कि सेना ने बिना किसी नुकसान के पहला घेरा तोड़ दिया है और इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाकों को मार दिया है। इराक के मूसल शहर पर नियंत्रण की लड़ाई में इराकी सेनाएं शहर के बाहरी इलाके में कल दाखिल हुई थीं। आज इस सैन्य अभियान का 17वां दिन है। मूसल पर 2 साल पहले चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कब्जा किया था और अब 2 साल बाद इराकी सेनाएं इस शहर में घुसी हैं। पिछले 2 हफ्तों से मूसल से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के अभियान में 50,000 इराकी सैनिक, कुर्द लड़ाके, सुन्नी अरब कबीले के लड़ाके और शिया हथियारबंद लड़ाके शामिल हैं। सेना की टुकड़ी के साथ मौजूद बीबीसी के संवाददाता के मुताबिक सैनिकों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इराकी सेनाएं अब हर घर की तलाशी का अभियान चला रही हैं। सेना घर घर में घुसकर लड़ाई करने की तैयारी कर रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इराकी सेना सहायक सैन्य टुकड़ियों का इंतजार कर रही है। सेना को इस्लामिक स्टेट द्वारा इस्तेमाल की जा रही गुप्त सुरंगों, उनके छुपे हुए लड़ाकों और हमले की आशंका है। बीबीसी ने स्थानीय लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि वे डर के साये में जी रहे हैं। एक महिला ने बताया कि पिछले 2 सालों में वो अपने घर से सिर्फ एक बार बाहर निकली। संयुक्त राष्ट्र ने मुसल में रह रहे करीब 10 लाख आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जाहिर की है। मुसल से 70 किलोमीटर दूर उत्तर में दोहक में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल की अल्वहिल्द स्ट्रॉम मौजूद हैं। उनका कहना है कि इलाके से भाग रहे लोग वहां पहुंचने लगे हैं।
हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि शहर से बाहर निकलने के लिए उन्हें सुरक्षित रास्ते मिले। इस तरफ हम शहर छोड़कर जा रहे लोगों की मदद के लिए कैंप बनाने की तैयारी में जुटे हैं ताकि उन्हें जगह मिल सके। पिछले 2 हफ्ते के दौरान मूसल के बाहरी इलाकों से पलायन कर चुके लोग यहां पहुंच चुके हैं और हमने उन्हें शरण दी है।
अल्वहिल्द स्ट्रॉम के शब्द। इराक के उत्तर में स्थित मूसल इस्लामिक स्टेट का अंतिम गढ़ माना जा रहा है। पिछले कई दिनों से मूसल के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है और इराकी सेना को रॉकेट तोप के गोलों और मशीन गन की फायरिंग का सामना करना पड़ रहा है। सेना ने मूसल के कुकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर नियंत्रण कर लिया है। सेना के मुताबिक मूसल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी ऐसे ही अभियान जारी हैं। मानवाधिकार मामलों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक कल आई ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट ने मूसल के दक्षिण इलाके में कई आम नागरिकों का अपहरण और हत्याएं की हैं। रिपोर्टों के मुताबिक शनिवार को इराकी सुरक्षा बलों के 40 पूर्व सैनिकों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र का ये भी कहना है कि आईएस ने नागरिकों को रणनीतिक महत्व की जगहों के नजदीक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आईएस ने नजदीकी गाँव से करीब 25,000 नागरिकों को मूसल में ले जाने की कोशिश की है ताकि उनका इस्तेमाल मानवीय ढाल के तौर पर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने मूसल में जंग लड़ रही इराकी सेनाओं से अपील की है कि उन्हें नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
इराकी सेनाएं मूसल में घुसी। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में कुछ अरसे से जारी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को सत्ता से हटाना चाहता है। माडुरो ने वेनेजुएला के बेहद लोकप्रिय नेता उगो शावेस के निधन के बाद देश की सत्ता संभाली थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि माडुरो के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई है, इसलिए उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आज के दुनिया जहान में अमरेश द्विवेदी यही पड़ताल कर रहे हैं कि वेनेजुएला के राजनीतिक संकट की असल वजह क्या है और इसका परिणाम क्या हो सकता है।
दुनिया जहान। वेनेजुएला की राजधानी कराकास की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये लोग माडुरो के नेतृत्व से नाराज हैं और उन्हें लगता है कि जब तक माडुरो सत्ता में रहेंगे देश की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी। वेनेजुएला के करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता उगो शावेज का लंबी बीमारी के बाद जब साल 2013 में निधन हुआ तो उनके बेहद करीबी माने जाने वाले माडुरो ने देश की बागडोर संभाली। खुद शावेज ने माडुरो को नॉमिनेट किया था और बाद में जब अप्रैल 2013 में चुनाव हुए तो शावेज को चाहने वाली जनता ने निकोलस माडुरो के पक्ष में मतदान किया। वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई कहते हैं,
इट वाज अ लॉयल्टी टू चावेज, चावेज की लॉयल्टी, ऑल द चावेज सपोर्टर्स वोटेड फॉर हिम, बट यू नो ही हैड अ वेरी थिन मेजॉरिटी, उनकी मेजॉरिटी बहुत कम थी और लोग ने चावेज को वोट दिया और मदुरो को वोट नहीं दिया।
चावेज के शासनकाल में विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति रहे निकोलस माडुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उनकी राह शुरुआत से ही आसान नहीं रही। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर रही है। निर्यात से होने वाले राजस्व का 95% हिस्सा तेल से ही आता है, लेकिन माडुरो के शासन की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में भारी गिरावट से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। ब्राजील में वरिष्ठ भारतीय पत्रकार शोभन सक्सेना कहते हैं,
जिसका मुख्य कारण इसका आर्थिक है। ह्यूगो शावेज के टाइम में जो तेल की कीमत थी काफी अच्छी थी, $150 तक पहुंच गए थे, और पिछले 4-5 सालों में तेलों की कीमत काफी ज्यादा गिर चुकी है और वेनेजुएला की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी आर्थिक स्थिति है, वो तेल के एक्सपोर्ट पे निर्भर करती है। तो क्योंकि तेल की कीमत गिर गई है, उनको बहुत बड़ी आर्थिक समस्या वहां पे है सरकार के सामने, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अब खर्च कर सकें गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या सिक्योरिटी के लिए, और इस वजह से उनको बड़ा भारी विरोध करना पड़ा है और विपक्ष पार्टियों से, जो इस आर्थिक जो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के विरोध में। और वेनेजुएला की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास पैसा बहुत था जब तेल की कीमत अच्छी थी, उन्होंने और क्षेत्र में उसका इन्वेस्ट नहीं किया, वो काफी तेल पे ही निर्भर रहे और अब पूरी दुनिया में इस तरह की क्राइसिस चल रही है और वेनेजुएला भी इस क्राइसिस का शिकार हो गया है।
वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंदाजा है कि अगले साल तक मुद्रास्फीति 1660 फीसदी तक हो जाएगी। देश खाद्य संकट का सामना कर रहा है, लोगों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही, नियमित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है और सामाजिक कार्यक्रमों का वित्तीयन कमजोर हुआ है, जिससे गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में माडुरो की वामपंथी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी की सरकार की लोकप्रियता घट रही है और इसी मौके का फायदा उठाकर विपक्षी गठबंधन माडुरो को हटाने की मांग कर रहा है। पत्रकार शोभन सक्सेना इसे लैटिन अमेरिका में बढ़ते दक्षिणपंथी प्रभाव के रूप में भी देखते हैं।
तो ये लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ब्राजील में परिवर्तन हो चुका है, अर्जेंटीना में भी दक्षिणपंथी सरकार है, दूसरे देशों में भी ऐसी लड़ाई काफी चल रही है और वेनेजुएला में भी ये लड़ाई अपनी चरम सीमा पे है, क्योंकि जो वामपंथी सरकार वहां पे करीब 14-15 सालों से सत्ता में है, अब उसको गिराने की कोशिश की जा रही है।
हुगो शावेस जब 1999 में सत्ता में आए थे तो इसे वेनेजुएला में बड़े सामाजिक बदलाव के प्रतीक के तौर पर देखा गया था। शावेस से पहले देश के विशाल तेल भंडार पर कुछ धनाढ्य परिवारों के समूह का वर्चस्व था और वही लोग सत्ता पर भी काबिज थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लैटिन अमरीकी विभाग में प्रोफेसर अब्दुल नाफे कहते हैं,
आर्थिक जो व्यवस्था थी वो इस तरह की थी कि तेल का फायदा सिर्फ तेल की कंपनियों को और तेल के एग्जीक्यूटिव को और थोड़ी सी जो एक मिडिल क्लास थी वेनेजुएला में उसके पास थी। चावेज ने इस तरह की जो सामाजिक चीज थी कंट्रोल था उसको तोड़ा है और पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई है। तो इसलिए वो लोग जो 40-50 साल तक पावर में थे आर्थिक और राजनीतिक, वो घबराए हुए इस बात से। जब तक चावेज थे उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, कैरिस्मेटिक आदमी था, तेल की कीमत अच्छी थी, पॉपुलर लीडर था देश के अंदर भी देश के बाहर भी। माडुरो में वो चीज नहीं है। दूसरे माडुरो के साथ आर्थिक संकट आया तो अब जो पुराना एक शासक दल है, तबका है, वर्ग है, उसको ये लगता है कि माडुरो को ठीक या गलत कोई भी तरीके से उखाड़ करके फेंक दिया जाए तो अच्छा है।
वेनेजुएला में करीब 100 साल पहले तेल के भंडार का पता लगने के बाद से अमेरिका की उसके अंदरूनी मामलों में गहरी दिलचस्पी रही है। जानकार मानते हैं कि हुगो शावेस से पहले की जो व्यवस्था थी उसे कुछ हद तक अमेरिका नियंत्रित करता था और वर्तमान में जो समूह माडुरो का विरोध कर रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप में अमेरिका का समर्थन हासिल है।
वेनेजुएला के जो विपक्ष के नेता हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका जो उनकी बहुत उनके आर्थिक संबंध अमेरिका से बहुत ज्यादा गहरे संबंध है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता इस दावे के साथ कि अमेरिका ही यहाँ पे सारा कुछ जो हो रहा है उसको कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तो एक बड़े पृष्ठभूमि में देखें कि कौन लोग हैं जो विपक्ष के नेता हैं, उनका बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है और उनके संबंध अमेरिका के साथ कैसे रहे हैं, तो इसको बहुत जानना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका का बड़ा भारी हाथ है जो यहाँ पे हो रहा है। जो यहाँ का लोकल एलीट है वो न केवल वेनेजुएला में बल्कि ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिली में, उरुग्वे में, सारे देशों में इसके ऐतिहासिक रूप में इनके बड़े गहरे संबंध रहे हैं अमेरिका के साथ।
माडुरो को हटाने की मांग के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। इसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि वेनेजुएला की जनता नहीं चाहती कि माडुरो सत्ता में बने रहें। लेकिन प्रोफेसर नाफे मानते हैं कि तेल की कीमत से जुड़ी अर्थव्यवस्था से भले ही मध्यवर्गीय तबका आशंकित हो गया हो, लेकिन माडुरो को अभी भी देश के दूर दराज के इलाकों में बैठी बहुसंख्यक गरीब जनता का समर्थन हासिल है।
एक सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि देश की जो गरीब जनता है, जो कलर्ड है, जो गरीब है, जो ब्लैक्स है, अफ्रीकन कैरेबियन टाइप के लोग हैं, मिक्स्ड मुलाटोज हैं, वो उन्हें चावेस की और माडुरो की पॉलिसीज का फायदा भी हुआ है, वो माडुरो के साथ है।
सवाल उठता है कि जब आम लोग माडुरो के साथ हैं, दूर दराज के इलाकों में बसने वाली गरीबों की आबादी माडुरो के साथ है, तो फिर उनके खिलाफ जारी विपक्षी विरोध का परिणाम क्या होगा?
माडुरो जिस सत्ता में आए हैं 3-4 साल से, वो लगातार ये ऐसा विरोध का सामना कर रहे हैं। लाखों लोग मिडिल क्लास के लोग सड़क पे आ चुके हैं, उनके समर्थन भी सड़क पे आ चुके हैं और ये लड़ाई मेरे ख्याल से बड़ी लंबी चलेगी और बहुत ही भीषण लड़ाई होगी।
जानकार मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत की वजह से माडुरो की लोकप्रियता और सुरक्षा से भरे मध्य वर्ग में भले ही कम हुई हो, लेकिन समाज का गरीब तबका और संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ हैं। ऐसे में उन्हें सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं होगा, और अब तो उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसे राजनीतिक संकट के हल की दिशा में एक शुभ संकेत माना जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें सुधरती हैं, तो माडुरो विरोध कर रही जनता का भरोसा एक बार फिर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अमरेश द्विवेदी, BBC दिल्ली।
अगले बुधवार को भारत और इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में राजकोट में आमने सामने होंगे। आज भारत की टीम का चयन किया गया, लेकिन सिर्फ 2 टेस्ट मैचों के लिए। KL राहुल, रोहित शर्मा और शिखर धवन चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना सके। गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा जगह बनाने में कामयाब रहे। भारतीय टीम के चयन पर आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
भारत और इंग्लैंड के बीच अगले सप्ताह से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला टेस्ट मैच राजकोट में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के लिए आज मुंबई में चयनकर्ताओं ने पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया।
इस मुरली विजय, गौतम गंभीर, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे इज प्लेइंग एज वाइस कैप्टन,
आर अश्विन, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या, करुण नायर और जयंत यादव टीम के अन्य सदस्य हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन और KL राहुल पूरी तरह फिट ना होने के कारण टीम में जगह नहीं बना सके। टीम के चयन को लेकर भारत के पूर्व कोच और ऑलराउंडर रहे मदन लाल कहते हैं,
में अच्छा किया है करुण नैया, जयंत यादव ने अच्छा किया हुआ है और हार्दिक पांडे एक अच्छा ऑलराउंडर है। अच्छी बात है, इन युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलेगा। इसमें ये भी है कि काफी खिलाड़ी जो है हमारे इंजर्ड भी हैं, जैसे रोहित शर्मा या KL राहुल और शिखर धवन, ये इंजर्ड है। वापसी हुई है गौतम गंभीर की हुई है, और क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा किया है।
उम्मीदों के अनुरूप ईशांत शर्मा टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और जयंत यादव तो न्यूजीलैंड के खिलाफ समाप्त हुई एक दिवसीय सीरीज में खेल चुके हैं। आर अश्विन, अमित मिश्रा, रविंद्र जडेजा और जयंत यादव के अलावा अगर करुण नायर को भी मौका मिला तो वैसे तो वो बल्लेबाज हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो क्या भारत एक बार फिर मेहमान टीम को घरेलू लाभ के नाम पर टर्निंग विकेट देने जा रहा है? मदन लाल कहते हैं,
इंडिया में तो टर्निंग ट्रैंक होंगे ही होंगे, पर पिछले 1-2 साल से जो ट्रेंड चला हुआ है कि विकेट जो है 1-1.5 दिन लास्ट करती है, उसके बाद गेंद जो है काफी ज्यादा टर्न करना शुरू कर देता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट मैच के लिए अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि कम से कम 3 दिन तक तो अच्छा मैच होना चाहिए, और 4-5 दिन अगर टर्न करता है तो गेम अच्छा होता है, दर्शक है उनकी वापसी होती है, वो देखने आते हैं।
वैसे टर्निंग विकेट पर क्रिकेट प्रेमियों ने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को रनों के लिए तरसते देखा, तो उसके बाद न्यूजीलैंड के रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल और खुद कप्तान केन विलियमसन जैसे धुरंधर बल्लेबाज भारत के खिलाफ आया राम गया राम साबित हुए। खैर, अब विकेट की माया तो विकेट जाने, लेकिन इन विकेट पर किसकी कमी भारत को खलेगी? KL राहुल ने वेस्ट इंडीज में 2 शतक जमाए, तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 6 पर आकर दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में टीम की जरूरत के अनुसार तेज तर्रार अर्धशतक बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की। मदन लाल का मानना है,
2 साल के अंदर अंदर जो इन्होंने क्रिकेट खेली है KL राहुल ने, एक चेंज खिलाड़ी आप देखने को मिला है। रोहित शर्मा, हाँ वो पैचेस में है तो उनके पास टैलेंट बहुत है, पर उनका पता नहीं लगता भी कब रन बनाएंगे, कब नहीं बनाएंगे, कब भी आउट हो जाएंगे, पर ठीक है, कभी कभी ऐसी पारी खेल देते हैं जो कि मैच विनिंग पारी होती है। ज्यादा तो मिस करेंगे KL राहुल तो।
अब कुछ बड़े नाम चोट के कारण टीम से बाहर हैं, तो देखना है कि उनकी कमी क्या ये बदलाव पूरा करते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। वन रैंक वन पेंशन यानी ORP की मांग के चलते 70 साल के पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल ने कथित तौर पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सैनिकों के साथ छलावा किया है। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों ने करीब 200 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सरहद पर हो रही गोलीबारी के चलते फैले तनाव को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। عراق کے موصل شہر پر نیئنترن کی لڑائی میں عراقی سینائیں شہر کے باہری علاقے میں داخل ہو گئی ہیں۔ عراقی سینا اب گھر گھر میں گھس کر لڑائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مانواधिकारوں کے لیے کام کرنے والی سنستھا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس کے روس کے دفتر کو ادھیکاریوں نے بند کر دیا ہے۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے تلک راج بھاٹیہ، ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، نمسکار۔